हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके अरमान शहर से बाहर लोनावाला पहुँच चुका था। लोनावाला में अरमान का खुद का एक ब्यूटीफुल सा घर था, जहाँ से पहाड़ों की ऊंचाई, वहाँ की खूबसूरती सब दिखाई देता था। अरमान को वही किसी हिल स्टेशन पर एक नए कंस्ट्रक्शन साइट शुरू करनी थी, इसलिए वो वहाँ वही ज़मीन देखने के लिए गया था। अरमान वैसे तो 2 दिन का प्लान करके आया था, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और बारिश का मौसम देखकर उसका वहाँ 1 हफ्ते रहने का इरादा बन चुका था। लेकिन वो ये नहीं जानता था, लोनावाला उसके लिए कभी ना भूलने वाली ट्रिप बनने वाला था। अनुराधा अरमान के एक एक पल की खबर रखे हुए थी, और जैसे ही उसे पता चला अरमान लोनावाला जाने वाला है, तभी उसने अपना एक मास्टर प्लान रेडी कर लिया था, जिसमें उसने अपना मोहरा किसी और को नहीं बल्कि सुधाकर जी को बनाया था। सुधाकर को ही उसने अरमान के पीछे लगाया था, क्योंकि अनुराधा सुधाकर के अंदर छुपा हुनर पहचान चुकी थी कि ये आदमी आसानी से किसी के बारे में पता कर सकता है। जब ये आदमी अनुराधा जैसी मास्टरमाइंड की डिटेल्स कुछ ही दिनों में निकाल सकता है, तो उसके लिए अरमान पर नज़र रखना कौन सा बड़ी बात थी। अनुराधा अपने फूल प्रूफ प्लान के साथ लोनावाला पहुंच चुकी थी। अरमान इस ट्रिप पर बिल्कुल तन्हा गया था। उसने तेजा को भी ठाकुर मेंशन में छोड़ दिया था। जोया के जाने के बाद उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता था। उसे जोया से कोई मोहब्बत नहीं थी, फिर भी ना जाने क्यों जोया का उसके पास होना उसे काफी ज्यादा सुकून देता था। अरमान अपने घर में पहुंच चुका था, सो आज वो काफी ज्यादा थक चुका था, सो सबसे पहले वो अपने कमरे में गया और शावर लेने की तैयारी करने लगा, क्योंकि आज ही उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट भी देखने जाना था। तो वो उससे पहले फ्रेश होने चला गया था, और जल्दी ही फ्रेश होकर एक बढ़िया सा ठंडे ठंडे पानी से शावर लेकर वो वहाँ की खूबसूरती देख रहा था। उसका घर जिस जगह पर था वहाँ से बर्फीली वादियों, पहाड़ और चारों ओर हरियाली साफ देखी जा सकती थी। तो अरमान वहाँ के खूबसूरती में एकदम से खो सा गया था, और गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्की के साथ वो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहा था। अरमान के उस घर में काम करने के लिए सुबह शाम एक औरत आती थी। जब जब अरमान वहाँ आकर रहता था, तब तब वो औरत उसके लिए खाना, कॉफ़ी वगैरह बनाने का काम करती थी। अरमान वहाँ रहे या ना रहे, फिर भी हर महीने उस औरत को समय पर उसकी पगार मिल जाती थी, जबकि उसकी ड्यूटी तभी होती थी जब अरमान वहाँ आता था। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग था, क्योंकि अनुराधा ने उस औरत को खरीद लिया था और अपने साथ लाया हुआ एक पाउडर अरमान के खाने में मिलाने को कह दिया था। वो औरत मजबूर थी, अगर वो अनुराधा की बात नहीं मानती तो अनुराधा उसके पूरे परिवार को मार डालती, सो मजबूरी में उसे अरमान से गद्दारी करनी पड़ी थी, और उसे वो करना पड़ा था जो अनुराधा ने उसे कहा था। वेल, अरमान अच्छे से फ्रेश अप होकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए निकल चुका था, और वो उस औरत को बता कर गया था कि वो आज शाम को खाने में क्या खाएगा। उसके आने से पहले पहले पूरा खाना रेडी हो जाना चाहिए थी, और उसने हाँ में सर हिला दिया था। वहीं दूसरी ओर राजवीर अनुराधा की टीचर की बेटी वाली स्टोरी लेकर अपने अंकल चीफ शमशेर सिंह के ऑफिस जा पहुंचा था। जैसे ही शमशेर सिंह जी ने अनुराधा की वो फाइल पढ़ी, वो सोच में पड़ गए और राजवीर से बोले, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? तब राजवीर को मजबूरन सुधाकर जी का नाम लेना पड़ा था। शमशेर सिंह जी ने थोड़ी देर उस फाइल को देखा और कुछ सोचकर राजवीर से कहा, तुम जाओ और जब मैं तुम्हें फ़ोन करूं तब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। राजवीर शमशेर की ये बात सुनकर हैरान रह गया था। उसे तो लगा था फाइल में अनुराधा की डिटेल्स पढ़कर शमशेर वो फाइल उसके मुंह पर दे मारेगा, लेकिन ये तो सब कुछ उलट पलट हो गया था। राजवीर को एक बात की तसल्ली हो गई थी कि चलो कम से कम उसे अपनी जॉब तो वापस मिल जाएगी, और इसी खुशी में वो जल्दी से जल्द ठाकुर मेंशन पहुंच चुका था। आज राजवीर जैसे मर्जी पूरे ठाकुर मेंशन में घूम सकता था, क्योंकि उसे तो पता था कि आज दोनों भाई ठाकुर मेंशन के मालिक अपने मेंशन में नहीं थे। राजवीर ठाकुर मेंशन गया और सीधा मेहर के कमरे में चला गया था। उसने देखा मेहर चादर तान कर सोई हुई थी। राजवीर उसे सोया देख थोड़ा सा चिढ़ सा गया था, और उसने एक झटके से उसकी चादर उतार दी और कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें सोने की, अभी तो पूरी रात बाकी है। ऐसा कहकर वो उस पर टूट पड़ा। वो जितना वाइल्ड हो सकता था उतना वाइल्ड हुआ था। उसने उसकी नस नस में दर्द कर दिया था। महर रोने और चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसे तो बस ये पता था कि इतना बुरा हाल तो उसका जोया के बाप भाई ने भी नहीं किया था। वो भी प्यार से उसको छूते थे, बस उसके जिस्म को कभी ढकते नहीं थे, हमेशा उसे नंगा रखते थे। लेकिन यहाँ बात अलग थी। वहाँ तो वो एक किडनैप लड़की थी, लेकिन यहाँ तो वो उसकी पत्नी थी। राजवीर उसका पति था। एक पति होकर वो उसके साथ जानवरों से भी बदतर बिहेव कैसे कर सकता था? वेल, महर की आंखें एक बार फिर भर आई थी और वो अपनी किस्मत पर बेतहाशा रो दी थी। वहीं दूसरी ओर अरहम की गोद से कोई जोया को ले गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। बस यही बात उसके दिल में दर्द पैदा कर गई थी। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो भी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं अबीर ने जोया का सर अपनी गोद में रख रखा था और बहुत प्यार से वो उसके गालों को छू कर बोला रहा था, उठो जोया, प्लीज आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें, ड्राइवर जल्दी चलो। अबीर जिंदगी में पहली बार घबराया था, वो भी अपने लिए नहीं किसी और के लिए। जोया को बेहोश देखकर उसे उसकी जान जाती हुई सी महसूस हो रही थी। उसे खुद सांस लेने में कठिनाई से हो रही थी। जल्दी ही वो लोग शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। अबीर को देखते ही सारा स्टाफ एक तरफ खड़ा हो गया था और जितने भी दो डॉक्टर थे सबके सब वहां जमा हो चुके थे। अक्रम, रिया और जोया को जल्दी से स्ट्रेचर में लेटाया गया और उनका बड़े ही उच्च पैमाने पर इलाज किया जाने लगा था। जब तक जोया का इलाज चलता रहा तब तक अबीर उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। वही अरहम अबीर की गाड़ी का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच चुका था और जब वो हॉस्पिटल आया तो हैरान रह गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लॉबी में गार्ड ही गार्ड खड़े हुए थे और उनका बॉस यानी अबीर राठौर बेचैनी से वहां टहल रहा था। अरहम ही जोया के बारे में जानना चाहता था, वो कैसी है, आखिर उसे क्या हुआ था। अरहम ने अपना फेस कवर कर लिया था क्योंकि वो हॉस्पिटल में किसी तरह का हंगामा नहीं चाहता था। उसे पता था अगर उसे जोया और रिया ने देख लिया तो पक्का वो दोनों कुछ न कुछ कर बैठेगी और अरहम नहीं चाहता अब उसकी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। अभी तो अरहम बड़े ही ध्यान से अबीर को टहलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, दिखने में तो काफी पावरफुल लगता है, फिर ये जोया को लेकर इतना परेशान क्यों है, आखिर क्या रिश्ता हो सकता है इसका जोया से। अभी अरहम सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर जो जोया का इलाज कर रहे थे वो बाहर आ गए। अबीर ने उनके निकलते ही बोलना शुरू कर दिया था, क्या हुआ जोया को, जोया ठीक है ना। अबीर को जोया की इतनी फिक्र करता देख ना जाने अरहम को क्यों बुरा लग रहा था। तभी डॉक्टर सिर झुकाकर बोले, सर मैडम ठीक हैं, शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं था इस कारण वो बेहोश हो गई थी।
अबीर ने सुनते ही सोच में पड़ गया और बोला, उसे कब तक होश आएगा। जी सर, मैडम को 10 से 15 मिनट के बाद होश आ जाएगा। तब अबीर ने राहत की सांस ली और बोला, और वो दोनों कैसे हैं, उनको होश आ गया। जी सर, उनमें जो सर है उनका बीपी थोड़ा लो हो गया था, इस वजह से वो बेहोश हो गए थे। ओ, पर अब वो ठीक हैं और अगले धीरे धीरे होश में आ रहे हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ओ ओके, और उनकी वाइफ, डॉक्टर जी। जी सर, वो उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, उनके कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ओ, अबीर ने थोड़ा दुख जताया और अकरम से मिलने के लिए चला गया और अरहम रिया की हालत के बारे में सुनकर परेशान सा हो गया था। अबीर ने सोचा जब तक जोया को होश आए तब तक अकरम जी से मिल लिया जाए, आखिर वो बेहोश क्यों हुए थे, शायद कुछ पता चल जाए। अबीर अकरम के कमरे में चला गया। उसने देखा अकरम कुछ होश में था तो कुछ बेहोशी में था। अबीर अंदर गया और उसने अकरम के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। किसी को साथ महसूस करके अकरम ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल ली और सामने अबीर राठौड़ को देखकर चौंक गया और बोला, साहब आप यहाँ। अभी अकरम काफी वीकनेस फील कर रहा था इसलिए वो अटक अटक कर बोला था। अबीर ने कहा, अकरम जी आप ठीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप। अकरम थोड़ा अटकते हुए बोला, अब पहले से बेटर लग रहा है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अकरम ने अबीर को देखते हुए पूछा। एक्चुअली अकरम अबीर को देखकर शॉक्ड में था। तब अबीर राठौड़ ने कहा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको और बाकी सबको हुआ क्या था। अक्रम, आपका बाकी सबसे क्या मतलब है और रिया और जोया कहाँ है? जोया तो बेहोश हो गई थी, वो ठीक तो है ना? और रिया यहाँ क्यों नहीं है? अक्रम की बात सुनकर अबीर समझ चुका था कि अक्रम को कुछ भी नहीं पता है कि उसकी बीवी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। वेल, अबीर ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अक्रम को बता दिया कि तुम्हारी होने वाली बीवी भी बेहोश हो गई थी, इसलिए वो भी यहाँ एडमिट है। ये सुनते ही अक्रम शॉक्ड हो गया था और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया कैसे बेहोश हो सकती है? आखिर क्यों? मुझे जाना होगा उसके पास। जोया कहाँ है? वो कैसी है? पता नहीं क्या हुआ मेरे परिवार को अचानक से। अबीर अक्रम को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त अक्रम क्या फील कर रहा था ये कोई नहीं समझ सकता था। प्लीज़ लाइक, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।